نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جادو ہے کیا چیز, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, سحر کا مطلب کیا ہوتا ہے. سحر سے مطلب ہے, لئیس کہتے ہیں کہ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے پھر اسے مدد لی جاتی ہے. سمجھ آئی بات؟ دیکھیں نا, آپ نے کسی سے ہیلپ لینی ہو تو پہلے اسے کلوز ہوتے ہیں تو پھر کچھ اسے بھائی راہ و رسم بڑھاتے ہیں, کچھ اسے کانٹیکٹس بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں, کانٹیکٹ بنتے ہیں تو پھر ہی وہ آپ کی مدد کرتا ہے. ایسے تھوڑی راہ چلتے کوئی کسی کی مدد کر دیتا. تو اس میں جادو میں کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن ہی ہے, یہ وہ عمل ہے جس میں پہلے شیاطین کو ان کے قریب ہوا جاتا ہے, کلوز ہوا جاتا ہے, پھر وہ آپ کی مدد کرتے ہیں, تبھی وہ مدد کرنے پہ راضی ہوتے ہیں نا. پھر اسی طرح شریعت کی اصطلاح میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہوا ہو. اثرات تو نظر آتے ہیں مگر اثر ڈالنے والی چیز نظر نہیں آتی. اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں, اچھا بیماری ہے, سب طرح کے ٹیسٹ کرا لیے, ہر چیز کرا لیے, سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ چیزیں, ہو سکتا ہے ویسے اس کے اندر کسی ڈاکٹر کی بھی کوتاہی ہو, نہیں سمجھ آ رہی اس کو بیماری. ہر چیز کو بھی جادو نہیں سمجھ لینا چاہیے, لیکن جادو سے بیمار بھی کیا جاتا ہے لوگوں کو. تو اس لیے بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے لیے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا سبب کیا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. ہاں مگر یہ کہ یہاں پہ درد ہے, یہ ہے, یہ مسئلہ ہے, لیکن اس کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی, تو جادو ہوتا ہے. تو اسی طرح امام قدامہ کہتے ہیں کہ جادو ایسی گروں اور ایسے دم درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے یا جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل افیکٹ ہو جائے, جس پہ جادو کیا جائے نا, اس آدمی کا جسم یا دل یا عقل افیکٹ ہو رہی ہے. ایسی کوئی چیز جنتر منتر پڑے جا رہے ہیں, گریں لگائی جا رہی ہیں, یا ایسے الفاظ کہے جا رہے ہیں, یہ سب جادو ہے. تو جادو اصل میں انسان اور شیطان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی بنا پہ جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ کام کرتا ہے, اس کے بعد شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو جدائی ڈالنے والی یہاں پہ بات آئی نا, یہ جدائی میاں بیوی کے درمیان تو ہوتی ہی ہے, بیسک تو یہی ہے جو شیطان کا بھی فیوریٹ کام ہے, اور سب سے زیادہ یعنی فساد ڈالنے والی چیز ہے. ظاہر ہے شیطان انہی چیزوں کو پسند کرے گا جس سے انسانوں میں سب سے زیادہ فساد پیدا ہو. تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے سب سے زیادہ بڑا فساد کس چیز سے پیدا ہوتا ہے. مگر صرف میاں بیوی کے درمیان ہی نہیں, بلکہ دو دوستوں کے درمیان بھی اس کے ذریعے تفرقہ ڈالا جاتا ہے. اسی طرح ماں اور بیٹے میں جدائی ڈالی جاتی ہے, بیٹے اور باپ میں جدائی ڈالی جاتی ہے, دو بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیا جاتا ہے. شریکے کے کئی لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ان کو آپس میں ہی لڑا دو. دوستوں کے درمیان ڈالا جاتا ہے, بزنس پارٹنرز کے درمیان ڈالا جاتا ہے, اور یہ جو میاں بیوی کے درمیان والا ہے, یہ تو آپ کو پتہ سب سے ہی خطرناک ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے جب جدائی ڈالنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے, تو ہوتا کیا ہے, کیا ہو جاتا ہے اس بندے کو؟ اصل میں جس پہ جادو پھر کیا جاتا ہے نا, ایک دم سے یعنی پہلے اچھا بھلا تھا, اس کے بعد بس اس کو نفرت سی ہو گئی, ایسے نہیں ہے دشمنی سی پیدا ہو گئی اس کو نا دوسرے بندے سے. آپ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے, ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہا, اور پھر ڈفرینسز اتنے زیادہ ہو گئے, رائی کا پہاڑ بننا شروع کر گیا, چھوٹی سی بات ہوتی اتنا بڑا بن جاتا ہے. اچھا اور اگر میاں بیوی کے درمیان کیا گیا نا, تو پھر تو اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بیوی کی صورت جو ہے نا, وہ میاں کو سخت ناپسند ہوتی ہے, اور اگر عورت کے اوپر کیا ہے تو اس کو اپنے ہسبینڈ کی شکل سے نفرت ہونے لگتی ہے. اب یہ اگر آدمی پہ کیا ہوا ہے تو چاہے اس کی بیوی لاکھ خوبصورت ہو, سیرت والی ہو, مگر آدمی کو یہی لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے, اور اسی طرح عورت پہ کیا ہو تو اس کو بھی ایسے لگتا ہے. और वो फिर हर दूसरे के हर काम को नापसंद करने लगता है। जैसे मोहब्बत में नहीं होता हर अदा अच्छी लगती है, इसी तरह ये जादू जदा जो आदमी होता है ना, उसको दूसरे का हर काम बुरा लगता है। अच्छा, फिर वो उसको उस मकान से और उस जगह से भी नफरत होने लगती है जहां पे वो, जिसके लिए उसको जादू कराया गया, जिसको जो उसका ओपोनेंट है, चाहे आदमी है तो बीवी के लिए उसका कराया गया जुदा करने के लिए, तो उसको वो जगह बुरी लगेगी कि जहां पे वो रहती है। अब वो बाहर चाहे हंसता खेलता रहे वो आदमी, लेकिन जो ही घर में दाखिल होगा ना, उसको इतनी तंगी महसूस होने लगती है। तो फिर ये भी होता है कि एक दूसरे की का इखलाक बुरा लगने लगता है, सूरत बुरी लगने लगती है, वो जगह बुरी लगने लगती है। तो अब ये जादू कैसे किया जाता है? जब कोई भी ऐसे किसी आमिल बाबा और इनके पास जाता है ना और कहता है कि फलां उसमें शौहर और बीबी में जुदाई डाल दी जाए, तो जादूगर उसका नाम पूछता है जिसके लिए जादू करना है, और उसकी माँ का नाम पूछता है, और जिस पर जादू किया जाना होता है उसका कोई कपड़ा टोपी बाल वगैरह मांगता है। अगर उस से कोई चीज़ हासिल करना मुश्किल हो तो फिर उस रास्ते पे जादू कर दिया जाता है, जादू का पानी डाल दिया जाता है जहाँ से इस बंदे ने गुजरना है। जो ही वो बंदा वहाँ से गुजरता है जहाँ पानी गिराया हुआ था, तो फौरन ही उस पर जादू का असर होना शुरू हो जाता है। या यूं भी किया जाता है कि खाने पीने की चीज़ों में जादू करके उसको खिला दी जाती है। इसी तरह बहुत सारी औरतें हैं वो परहेज करती हैं कि भाई ऐसे जहाँ पे उनको डर होता है यहाँ से जादू ना हो, तो वहाँ पे वो उनके घर की या उनके लिए स्पेशल कोई चीज़ भेजते हैं तो वो नहीं खाती कि क्या पता जादू किया हो। वो खाने पीने की चीज़ों में भी जादू करके उसको खिला दी जाती हैं, उसको नफरत हो जाती है, फिर आदमी को खिला दी जाती हैं, घर बुला के खिला दी जाती हैं। तो इस जादू के इलाज के लिए फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि इलाज से पहले उस घर में ना ईमानी फिजा का पैदा होना ये ज़रूरी है। उस घर को हर किस्म की तस्वीरों से पाक किया जाए ताकि वहाँ पे रहमत के फरिश्ते दाखिल हों। फिर जो मरीज़ है यानी जिसके ऊपर जादू किया, उसके कपड़े वगैरह जिनके ऊपर शक है कि ये इस पे जादू तो नहीं किया गया, उनको जला दिया जाए। तावीज़ वगैरह अगर तो उनको जला दिया जाए। इस घर को हर किस्म के गानों से, मौसीकी से, म्यूज़िक से पाक किया जाए, और इस घर में अल्लाह ताला के अहकाम की मुखालफत ना की जाए। मसलन कोई बंदा सोना पहनता है तो वो सोना ना पहने, ना कोई औरत बेपर्द ना, ना कोई आदमी ये कोई भी नशावर चीज़ वगैरह इस्तेमाल ना करे, कोई सिगरेट वगैरह ये चीज़ें ना इस्तेमाल की जाए। फिर जो भी जिसके ऊपर जादू किया उसको भी और उसकी फैमिली को भी सही अकीदा बताया जाए ताकि गैरुल्लाह से ताल्लुक उसका ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर ये पहले तो पता करना ज़रूरी है ना कि किसी के ऊपर जादू किया हुआ है या नहीं, तो उससे कुछ सवालात भी पूछ सकते हैं कि तुम्हें अपनी बीवी मसलन कभी उसको देखते हो कि ये बहुत बदसूरत है या बहुत ही कभी हालत में तुम उसको देखते हो? क्या मामूली मामूली बातों पे तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं? क्या घर से बाहर तुम खुश रहते हैं या जू ही घर में आते तो तंग दिल और परेशान हो जाते हो? और क्या जब आपस में रिलेशनशिप दोनों का होता है तो इकताहट महसूस होती है, या नींद में तुम दोनों में से किसी एक को डरावने ख्वाब दिखाई देते हैं या बेचैनी महसूस होती है? तो ऐसी चीज़ों से सवालात करके पता चल जाता है कि ये इस बंदे के ऊपर जादू है या नहीं। अगर तो इस तरह का जादू की कोई बात है तो एक इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी भी कि इसका इलाज कैसे करना है। बाज़ लोग ये भी है कि वो उनके अंदर क्या होता है कि मेरा शौहर मेरी तरफ मायल हो जाए, वो जुदाई के लिए तो नहीं होता, उनको होता है कि बस मेरी तरफ मायल हो जाए। वो छोटा मोटे इख्तलाफात तो सबके हाँ होते हैं, लेकिन वो इस औरतें ना इस पे सब्र नहीं करती, फौरन जादूगर के पास भागती हैं कि जादू करा के बस मैं अपने शौहर की नज़रों में महबूब बन जाऊँ, बस वो कहीं और ना देखे, बस मेरा होके रह जाए। तो ये भी जब औरतों में दीन से वाकिफ नहीं होती ना तो ये काम होते हैं, तो ऐसे भी नहीं करना। ये भी जादू हराम है कि आप किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए जादू करा रहे हैं। फिर जादूगर ऐसी औरत से उसके हस्बैंड का भी या कोई कपड़ा, कोई रुमाल मसलन, टोपी कमीज़ वगैरह ये मांगता है जिसमें उसके पसीने की वो कपड़ा कोई नया या धुला हुआ ना हो, इस्तेमाल शुदा हो, तब जादूगर उस कपड़े से कुछ धागे लेता है, उन धागों पे गिरे लगा लगा के कुछ दम करता है, और फिर कहता है औरत से कि तुम इसको वीरान जगह पे दफन कर दो, या फिर खाने की किसी चीज़ पे या पानी पे दम कर के दे देता है। और इस जादू की बदतरीन किस्म तो ये है कि नापाक चीज़ों पे जादू किया जाता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। और लेकिन ये बात है कि कभी उस जादू की वजह से उसका शौहर बीमार हो जाता है, कभी इस जादू का असर भी उल्टा हो जाता है, उसको अपनी बीवी से बजाय मोहब्बत के नफरत होने लगती है, तो उलट भी असर हो जाते हैं। देखिए, एक मैं आपको जादू की जायज़ किस्म बताती हूँ। अगर किसी को अपने शौहर के दिल में जगह बनानी है ना, तो एक सही वाला जादू भी है, हलाल जादू, वो बताऊँ आपको, बजाय किसी के जादूगर के पास जाने के। क्योंकि हर औरत ये चाहती है कि अपने शौहर की नज़र के अंदर उसका अच्छा मकाम हो और अपने शौहर की नज़र में महबूब हो। तो अब उसके लिए पता है क्या करें, औरत अपने शौहर की खातिर बनाव सिंघार करें, अपने शौहर का दिल जीतने की कोशिश करें, उसका इस्तकबाल करें मुस्कुराहट के साथ, अच्छी तरह गुफ्तगू करें, ताकि उसका हस्बैंड इधर उधर देखे ही नहीं, वो अपनी बीवी से ही मुतासिर हो। फिर अपने शौहर की जब घर पे ना हो, उसके माल की हिफाजत करें, उसकी औलाद की हिफाजत करें, उन पे मुकम्मल तवज्जो दे, अपने शौहर की जो वो बात कहता है उसके मुताबिक चले, अल्लाह इसके वो शरीयत के ख़िलाफ़ हो फिर तो नहीं चलनी, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है तो फिर तो नहीं करना। लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं है, जस्ट ये कि मेरा दिल नहीं है और मैं ऐसे, मेरी मर्ज़ी ये है, इस वजह से ना मानना, और वो हाँ कहे तो ना करना, वो दाएं चलने को कहे तो बाएं चलना, तो इससे तो किसी का भी दिल नहीं जीता जा सकता। और हम आज के माहौल पे नज़र डालें ना, तो पता चलता है ये यहाँ पे तो दुनिया ही उल्टी हुई है। कोई औरत किसी पार्टी में जाए या अपनी किसी फ्रेंड से मिलने जाती है, इतना ज़्यादा बनाव सिंगार करती है, अपने कपड़े ऐसे पसंद करती जो कीमती सबसे ज़्यादा हों और सबसे ज़्यादा खूबसूरत हों, घर से भी ऐसे निकलती है जैसे पता नहीं दुल्हन बन के निकली है, और घर वापस आते ही सारी चीज़ों को उतार के फेंक देती है। और मिस्कीन शौहर जिसने ये सारी चीज़ें लेके दी हैं, वो फिर अपनी आंखें कहीं और ठंडी करता है, क्योंकि जब ये शौहर के सामने आती है तो घर के पुराने कपड़े पहने होते हैं, जिससे किचन की लहसुन और प्याज की बू आ रही होती है, लेंसेज भी लगा लेती हैं बाहर जाने के लिए, घर में वही ग्लासेस लगा के और घूम रही होती हैं हस्बैंड के सामने, ना कोई बनाव सिंघार तो क्या, बिल्कुल नॉर्मल हालत में भी नहीं होती। हालांकि औरत अगर अक्ल से काम ले ना, तो खुद ही समझ आ जाएगी कि इसकी जेबो जीनत का सबसे ज़्यादा हकदार उसका शौहर है। और जब शौहर घर से बाहर जाए, तो जल्दी से जल्दी अपने घर के काम को निपटा के इंसान नहा धो के खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने और खाने को तैयार रखे, तो शौहर घर वापस आएगा तो खुद ब खुद जब ये बीवी को मुंतज़र पाएगा अपने लिए, और ऐसा सारा घर का माहौल देखेगा, तो कैसे नहीं उसको मोहब्बत पैदा होगी। और ख़ास तौर पे अगर औरत ये अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करती है, तो फिर इसमें उसको अजर भी मिलेगा। तो औरत को यही कोशिश करनी है कि मैं अपने शौहर की नज़रों को हराम से बचा के रखूं। जो इंसान जिसका पेट भरा हो ना, उसको फिर खाने की चाहत नहीं होती। लेकिन जब इंसान को ज़रूरत भर भी ना मिले जितनी उसकी ज़रूरत है, तो फिर तो वो इधर उधर लपकेगा ना, इधर उधर जाएगा ना। तो अगर घर में उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो वो बाहर ही जाएगा। और ये है हलाल जादू। तो देखें, बात यही सारी बातों की एक बात निकलती है कि जादू जो हराम है ना, ये जो जो जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, आयात पढ़ रहे हैं, ये हर एक सूरत में, चाहे आप किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए, चाहे जुदाई डालने के लिए, वो तो है ही हराम जाहिर है, लेकिन कोई इंसान कहते हैं कि हम मोहब्बत पैदा करने के लिए कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग ये बहुत उनको वो होती है, हमारे ऊपर तो किसी ने जादू कर दिया, अब हम जादू को काटने के लिए अब फिर हम जादूगर के पास जा रहे हैं। तो हर तरह का जादू हराम है, बिल्कुल हराम है। कोई लोग कहते हैं हमें जादू कर दिया किसी ने, हम बीमार हो गए, हमारा कारोबार ठप हो गया, अब क्या है, अब हम आमिल बाबा के पास जा रहे हैं कि वो इस जादू को काटे। तो जादू उसने किया, फिर आपने भी जादू कर लिया, तो फिर क्या फर्क रह गया। तो ये जादू टूने, ये सारी ऐसी चीजें, जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन से ही बता दिया कि इसमें शयातीन से मदद ली जाती है। तो जब शयातीन से मदद ली जाएगी तो फिर आप बताएं कि क्या वो काम सही रह जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आके कहा कि मैं जमाना जाहिलियत मैंने पाया है और अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत से अब नवाज दिया है। हम में से कुछ लोग काहिनों के पास जाया करते थे, ये फॉर्चून टेलर्स हैं, ये सब ये जादू और इसकी किस्में ही है ना एक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन तुम उनके पास ना जाओ। मैंने अर्ज किया हम में से कुछ लोग बुरा शगुन लेते थे। बुरा शगुन लेना जैसे आज भी बुरा शगुन लेते हैं ना, 13 तारीख है ये बुरी है, सफ़र का महीना है, इसके अंदर शादी ना करो, और पता नहीं क्या क्या इस तरह की तोहमात वहमात, मुहर्रम में नहीं शादी करनी, फलाने नहीं ये करना। तो ये सब बुरे शगुन है जो लोग लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको वो लोग अपने दिल में पाते हैं, तुम इस तरह से ना करो। यानी पहले पुराने लोग ऐसे करते थे, तुम अब ऐसे ना करो मुसलमान हो के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी राफ के पास जाके, यानी किसी नजूमी के पास जाके, फॉर्चून टेलर के पास जाके, उससे किसी चीज़ के बारे में सवाल किया, उसकी 40 दिनों की नमाज कबूल नहीं होती। सोचिए इन 40 दिनों में अगर वो बंदा मर जाए तो क्या हो। और ये जादू के जब किसी को वहम हो जाता है ना मेरे पर जादू किया, तो वो चल पड़ते हैं उनसे पूछने के लिए, हमारे पर जादू तो नहीं किया हुआ, तो ये सवाल पूछा है ना उससे। तो ये सवाल पूछना भी, ये भी हराम है, इससे भी आप 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। और एक और हदीस में तो इससे भी बढ़ के बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने भी किसी नजूमी के पास जाके, यानी ये जादूगरों और इनके पास जाके कोई बात पूछी और फिर उसकी तस्दीक की कि हाँ हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, वाकई ये तो सही कह रहे हैं, तो उसने उसका इनकार किया जिसको लेके मैं आया हूँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया, आपकी शरीयत का इनकार किया, तो फिर ऐसा इंसान क्या मुसलमान रहेगा? क्या वो मुसलमान है जिस बंदे ने इनकार कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए हैं? तो फिर तो जादूगर या काहिन के पास जाने वाले, दोनों के पास जाने वाले, उसने उस शरीयत का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। तो देखिए उनके पास जाना तो दूर की बात है, उनसे सवाल करना तो दूर की बात, उनके पास जाना भी सही नहीं है, कुफर करना है। और जादूगर के बारे में तमाम आइम्मा कराम का इत्तेफाक है वो वाजिबुल कत्ल है। हमारे यहां तो देखें खुलेआम वो कह रहे होते हैं आमिल है फलां है ये काम करेगा, ये तो वाजिबुल कत्ल है इस्लामिक शरीयत में, और उसका आखरत में तो कोई हिस्सा है ही नहीं, दुनिया और आखरत दोनों तबाह हो गई, उसकी बर्बाद हो गई। एक हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबाह कर देने वाली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना है, इससे बचो, और जादू करने और कराने से बचो। दोनों चीज, जादू करना भी और करवाना भी, एक बंदा किसी के पास जाता है कि जादू कर दो, फलां के ऊपर जादू कर दो, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए इसके लिए जादू कर दो, हराम है ये। और गुनाहे कबीरा में से, बड़े गुनाहों में जो 7 बिग सिंस है ना, उनमें भी एक है यही जादू करना करवाना, बड़े गुनाहों में। अब आप इससे अंदाजा लगाइए ये कोई मामूली बात नहीं है। औरतें खास तौर पे इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि औरतों का जरा सा ईमान, मैं कहूंगी कि कमजोर होता है ना, जरा कमजोर होती हैं जरा अपनी तबीयत के लिहाज से, तो ईमानी लिहाज से भी ये हाल होता है कि जरा सी कोई मुश्किल आई घबरा जाती हैं, अब फौरन कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकले, अब चाहे वो आमिल बाबा करें, चाहे वो कोई नजूमी करे, तो चाहे कोई भी करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सितारों का इल्म सीखा उसने भी जादू का एक हिस्सा सीखा। कौन सा इल्म सीखा, कौन सा बताएं, स्टार्स का, उसने भी जादू का एक हिस्सा सीखा। फिर उस इल्म में जो जितना आगे जाएगा उतना उसके जादू के इल्म में इजाफा होगा। आपने कभी सोचा, स्टार्स का इल्म भी जादू की ही एक किस्म है। आपका स्टार कौन सा है? सबको पता है उनका स्टार कौन सा है? मेरा फलां है, फलां है। तो इतना ये तो इल्म आपने सीख ही लिया। अल्लाह अकबर। आज सितारों का इल्म इतना आम है, हर रिसाले, अखबार, टीवी प्रोग्राम, मैगजीन, जहां आप देख लें इसके ऊपर किताबें छपी हुई हैं। लोग पूरी पूरी बुक्स पढ़ते हैं स्टार्स के ऊपर, क्या होते हैं, इनकी क्या नकलो हरकत है कि पत्नी क्या है। लोगों ने की चेन्स उसके बनाए होते हैं अपने स्टार्स के, डेस्क पे उन स्टार्स के साइंस रखे होते हैं, दीवारों पे लटकाए होते हैं। इतनी ज्यादा इंटरेस्ट होता है स्टार्स में। ये कल ही नहीं था, आज भी यही है। ये इंसान जो अपने आप को बहुत आज सिविलाइज्ड और 21st सेंचुरी का इंसान समझता ना, वो भी इन तोहमात में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं, यानी उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिसने फाल निकाली या जिसके लिए फाल निकाली गई, जिसने गैब को जानने का दावा किया या वो गैब को जानने का दावा करने वाले के पास गया। तो आप तो नहीं गए कभी गैब का दावा करने वाले के पास? भाई अच्छा ये शादी कैसी रहेगी, ये की जाए कि नहीं की जाए, फाल निकाल के बताएं, या हाथ दिखा देते हैं अपना इनको, या आप बताएं कि इन दोनों के सितारे मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये कारोबार करें कि ना करें, फलानी जगह जाएं कि ना जाएं, मेरा वीज़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हैं, फलां से मेरी जान कब छूटेगी, ये ज़रा बताएं। ये गैब का वो जानने वाले जो हैं, आजकल तो हर जगह दुकानें खुली हुई हैं आगे के फ्यूचर के बताने वालों की, बल्कि बड़े इश्तिहार मिलते हैं उनके प्रोग्रामों को। और आगे भी है, या जिसने जादू किया या जिसके लिए जादू किया गया, और जो शख्स नजूमी के पास गया और वो जो जो उसने कहा उसकी उसने तस्दीक की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का इनकार किया। देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। यानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है, यानी मुसलमान ही नहीं है। हम में से नहीं होने का मतलब क्या है? इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो हम में से है ही नहीं। जो आप उम्मती होने का दावा करते हैं कुछ है, देख लें इस लिस्ट को, फाल निकालना या फाल निकालने वाले के पास जाना, जी आप हमारे लिए फाल निकाल दें। गैब को खुद जानने का दावा करना कि मुझे हाथ देखने आते हैं, मुझे सितारों का वो पता है, मुझसे आके पूछो फलान दिन आपका सही रहेगा, इस दिन सफर करो, इस दिन ऐसे करो, वो या फिर जादू करने का, जादू करना खुद भी नहीं भी आता, किसी जादू करने वाले के पास चलेगा, नजूमी के पास जाना, ये सब चीजें ऐसी हैं जो इंसान को कुफर तक ले जाती हैं। और हमारे अंदर कितनी कॉमन है, लोग कहते हैं वो भाई उसका स्टार उसके साथ नहीं मिलता ना, इसीलिए उनके दरमियान लड़ाई होती है, इसके स्टार इसके साथ नहीं है तो इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, वरना ये शादी चलेगी नहीं। हम तो सितारों पे इतना अकीदा रखते हैं, सितारे ही तो हैं हमारी नजर में, वो ही किस्मतें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं ना, हमारा साल शुरू कैसा होने लगा है, ये साल आपका कैसा रहेगा, हफ्ता कैसा रहेगा, पहले वो हफ्ता देखते हैं फिर उसके बाद हफ्ता शुरू करते हैं, इस दिन आप सफर ना करना वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जब लोग अल्लाह की किताब से दूर होने लगते हैं ना, तो ये चीज़ें जगह ले लेती हैं। जाहिर है किसी जगह वैक्यूम होगा तो कोई ना कोई चीज़ तो जगह लेगी ना, तो जगह जादू टूने और नजूमी और हाथ देखने और सितारे और फाले और इन चीज़ों में हम पढ़ गए, किताब हिदायत को छोड़ दिया, इसको तो पीछे डाल दिया और ये काम करने लगे। तो यही तो उन्होंने भी किया था, यही तो वो करते थे। अच्छा एक बात और जो ज़रूरी बात है वो ये कि हम ये देखें कि वो कौन सी सूरतें हैं जिनमें शयातीन को बहुत इजी हो जाता है कि वो बंदे के ऊपर, यानी इसके ऊपर जादू को, यानी ऐसे नहीं हो जाता जादू। अच्छा एक बात को और भी समझ जाए, ऐसे नहीं कोई जादू कर लेता। जब कोई इरादा करता है ना कि किसी के ऊपर जादू किया जाए, तो क्या करता है, उसके पीछे एक वो जिन को भेज देता है, अपने एक शैतान को, शैतान जिन को उसके पीछे भेज देता है। और वो शैतान जिन उसमें जो दाखिल होता है, तो इतना इजी नहीं होता उसके लिए दाखिल होना, इसलिए कि ये बंदा अगर बावजू है या अगर वो अल्लाह का जिक्र करने वाला है, तो जब तक अल्लाह का जिक्र करता है ना, वो नहीं दाखिल हो सकता। जब ये अल्लाह का जिक्र करना भूल जाता है, तब ये दाखिल होता है अंदर। और जब ये शैतान दाखिल हो रहा होता है किसी इंसान में, उस वक्त अगर वो अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दे, तो ये जल जाता है, जल के राख हो जाता है। इसीलिए ये इन शैतान जिन्नात के लिए ना बहुत क्रिटिकल मोमेंट होता है वो, जिस वक्त उन्होंने इस इंसान के अंदर दाखिल होना होता है। ये लोगों के ऊपर जिन आ जाते हैं ना, वो जो बात है उसकी बात बता रही हूँ। तो अच्छा, अब ये कि कौन कौन से मौके होते हैं जिनमें ये शयातीन जिन्नात इंसान पे यानी हावी होने, गलबा पाने में कामयाब होते हैं। देखिए, याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान इंसान के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है। वो तो अंदर गर्दिश तो करता रहता है, आता जाता है ये वो चीजें, लेकिन गलबा नहीं पा सकता वो, ठीक है, उसको उसको डोमिनेट नहीं कर सकता। अब इंसान इस चीज से तो नहीं रोक सकता गर्दिश करने से, लेकिन वो कुछ ऐसे काम कर सकता है जिससे कि वो इसको गलबा पाने से रोक सके, ठीक है। लेकिन कौन से टाइम्स के अंदर शैतान के लिए या जिन्नात, ये शयातीन जिन्नात में से हैं, इंसानों में से भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जिन्नात की बात कर रहे हैं। कौन से टाइम्स होते हैं जिनमें इनके लिए इंसान में दाखिल होना आसान होता है? अच्छा, चार तो मौके मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद और भी चीजें बताती हूँ जब आसान होता है उनके लिए। चार मौके में जिन इंसान में आसानी के साथ दाखिल हो सकता है। नंबर वन, जब शदीद डर और खौफ की हालत हो। नंबर टू, जब सख्त गुस्से की हालत में हो। नंबर थ्री, जब गफलत की हालत में हो, यानी वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहा, गाफिल है। नंबर फोर, जब वो ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए, ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है, उनमें अंधा हुआ हुआ है, तो उस वक्त भी शैतान को मौका मिल जाता है। तो शैतान ये कोशिश करता है कि इंसान इनमें से किसी सिचुएशन में आ जाए, जब वो या तो बहुत एकदम डर जाता है ना, तब वो एकदम एंटर हो जाता है इसमें, या फिर वो गुस्से में जब बहुत ज्यादा आता है, तो तब वो अपना काम दिखा लेता है, या फिर गाफिल हो जाए। तो वो चाहता है कि ऐसी किसी सिचुएशन में इंसान आ जाए, तो वो उसमें दाखिल होने में कामयाब हो जाए। इसी तरह याद रखें कि जितना इंसान अल्लाह से करीब होता है, उतना शैतान से दूर होता है, और जितना अल्लाह से दूर होता है, उतना शैतान से करीब होता है। तो अल्लाह ताला की कुर्ब की कोशिश करनी चाहिए। रब से दूरी जो है ना, रब की लानत है। और कोई अल्लाह से दूर है ना, ओहो, वो बड़ा महरूम है, जो दुनिया में गुम हुआ हुआ है और उसको रब की याद नहीं है, तो वो फिर शैतान के करीब ही है। ऐसे बंदे में तो शैतान दाखिल हो जाएगा। नंबर टू ये है कि जब इंसान लघवियात देखता है या सुनता है, तो उस वक्त भी शैतान को कब्जा जमाने का मौका मिल जाता है। लघव चीजें क्या हैं? कानों का लघव क्या है? ये म्यूजिक वगैरह, बुरी चीजें सुनना, बेहयाई की कोई गइबत वगैरह, चुगली ये वगैरह सुनना। इसी तरह आंखों की लघवियात भी हैं, फहाशी और बेहयाई के, जब सीन देखते हैं अपने सामने ना, या गैर महरमों को देखना, या किसी के सतर के ऊपर नजर डालना, चाहे वो औरत है या मर्द है, उनके सतर पे नजर डालना, ऐसी चीजों के वक्त भी शैतान इंसान के ऊपर गालिब आ जाता है। नंबर थ्री बात यह है कि इंसान जब अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है ना, तब शैतान मुसल्लत होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया ना कि जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, तो हम एक शैतान उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, जो उसका साथी बन जाता है। फिर इसी तरह नंबर फोर ये कि जब नमाजों में सुस्ती होती है, तो भी शैतान को जगह मिल जाती है आने की। इसीलिए पीरियड्स के दिनों में जब नमाज नहीं पढ़ते, तो जिक्र जरूर करें, दुआएं जरूर करें, پھر اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مجلسیں ہیں, حرام مجلسیں ہیں, ان میں نہ شامل ہوں, کیونکہ وہاں پہ شیاطین ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب کیا کریں, رشتہ داری نبھانی, فلانا کرنا, یہ ہے, تو یہ بات ہے کہ اگر شیطان نے وہاں پہ کیچ کر لیا نا, پھر ہو سکتا ہے کبھی بھی واپس نہ آئے. بعض لوگوں کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے فلاں مجلس میں گئی, اس کے اوپر فلاں کے اوپر نظر پڑ گئی, بس پھر وہ اس کے پیچھے پڑ گیا, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا, بس آگے سے آگے پھر سٹوری ہے. اسی طرح اگلی بات یہ جمائی کو روکیں. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز میں جمائی ہے تو تمہیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اس کو روکو, کیونکہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے, شیطان داخل ہو جاتا ہے جمائی لینے کے وقت میں نا. اچھا پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, یہ انسان کو, یہ وہ صورتیں ہیں کہ جب انسان کے اوپر شیطان جلدی, یعنی وہ ایزی سمجھتا ہے انسان کو شکار کرنا, ایزی پرے بن جاتا ہے انسان اس کے لیے نا. تو اس لیے ایسی تمام سچویشن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا ایک بات اور, جادو سیکھنے کی جو ہم نے ابھی کفر کی بات کی, کیا اس کے اندر ایسی کوئی جادو سیکھنے میں کوئی ایسی کیا مسئلہ ہے کہ یہ کفر ہو گیا یا کیا ہو گیا, اتنی بڑی بات ہو گئی؟ کفر تو بہت بڑی بات ہے, کیا اتنی بڑی بات ہے جادو سیکھنا, ایسا بھی کیا ہو گیا؟ اچھا یہ آپ کو جب اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ پتہ چلے نا تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ کفر کیسے ہے. یاد رکھیں یہ جو جادو سیکھنا ہوتا ہے نا, ایسے ہی نہیں ہو جاتا. یہ جو جادوگر ہوتا ہے نا, اس کو جادو کرنے کے لیے نظر آئے جیسے شیاطین کو اس کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے, ان کا قرب لینا ہوتا ہے, تو شیاطین کیسے قریب ہوں گے بتائیں؟ وہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے, درود پڑھیں گے, اس سے تھوڑی قریب ہوں گے. کس سے قریب ہوں گے؟ جب کوئی انسان شرکیہ کام کرتا ہے, کفر والے کام کرتا ہے, تو پہلے ان کو یہ کرنے پڑتے ہیں, چاہے چھپ کے کریں, اعلانیہ کریں, اس کے بدلے میں پھر شیطان جو ہوتا ہے نا وہ جنات کی مدد, جو جادوگر ہوتا ہے نا وہ جنات کی مدد حاصل کر سکتا ہے. پھر وہ جو ان کا بڑا لیڈر خوش ہوتا ہے اس سے, جو بڑا شیطان جن کسی جگہ کا سردار ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, تو پھر وہ خوش ہو کے اپنے کچھ چھوٹے جنوں کو اس کی خدمت کے لیے دے دیتا ہے کہ اس کی ہیلپ کروں. اب سوچیں سودا کیا ہے, ایمان کا سودا کر لیا کہ کافرانہ کام کرو گے تو یہ جن خدمت کریں گے. اب یہ جو خدمتگار جن ہے نا, ان کو وہ آرڈر دے دیتا ہے کہ اب جو بھی یہ جادوگر کہے گا, جو کرنا چاہے گا, غیب کی خبریں لانے کا کام ہے یا دو لوگوں میں نفرت یا محبت پیدا کرنے کا کام ہے یا جو بھی جدائی پیدا کرنے کا کام ہے, یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں. اب اگر کوئی جو خدمتگار جن ہے یہ جادوگر کی اگر مدد نہیں کرتا, تو وہ جو سردار ہے جس نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا, وہ پھر اس کو سزا دیتا ہے. پھر وہ سردار جن اور یہ اور جنوں کو اس کو سپلائی کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی اور جن تمہاری ہیلپ کرے گا. اور جس جن کو سزا ملی ہوتی نا, پھر وہ اس جادوگر کا دشمن ہو جاتا ہے, اس کو تکلیفیں پہنچاتا ہے. اسی لیے آپ بعض دفعہ دیکھتے ہیں, بعض دفعہ کے اکثر ہی اوقات یہ جو جادوگر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا, اتنے بے چین رہتے ہیں, ان کو نیند نہیں آتی رات کو, ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا. اکثر ان میں سے بے اولاد ہوتے ہیں, کیونکہ جو جن ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ان کی بیوی اگر ایکسپیکٹ کرتی ہے تو اولاد کو پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں. اور ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے. بعض جادوگر صرف اس وجہ سے یہ کام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اولاد چاہیے ہوتی ہے. ظاہر ہے اس چیز میں کیا سکون ہوگا کبھی؟ بے سکونی. بس یہ جو آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کے سارے کام کر دیں گے, میرا تو ایک سوال ہے آپ سے, وہ اپنے کام کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ اپنے کام کے, وہ کیوں آپ کے محتاج ہیں گے؟ وہ اتنے اتنے مہنگے اشتہار دے کے آپ تک پہنچتے ہیں کہ جی آپ ہم سے یہ کام کرا دیں. ان کو اتنا ہی خدمت خلق کا شوق ہے آپ کا مطلب, اتنا سوشل ورک کا اور لوگوں کی مدد کرنے کا شوق ہے. ان کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا, ان کی زندگی ویران ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہوتے ہیں. یہ جادوگر بننے کے لیے ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے کیسے یہ کام کرتے ہیں, تب جادوگر بنتے ہیں, ایسے نہیں بن جاتے. ظاہر ہے شیطان کا جو دوست بنے گا تو وہ پھر کیا کام کرنے پڑیں گے اس کو شیطان کا دوست بننے کے لیے. تو ہر وقت ان کو سر درد یا رات کو نیند نہیں آتی یا بے سکونیاں, بے آرامیاں, یہ سب یہ ان کی پرابلمز ہوتے ہیں. تو घबराहट तारी होना रात के वक्त में, वहशत ज़दा रहना, आप इनको देखते हैं कभी अगर कोई इनके पास जाए तो देखता है ये कैसे वहशत ज़दा से होते हैं, गंदे रहते हैं मुसलसल, और इनके घरों में इनको बाज़ दफ़ा बड़े बड़े सदमे देखने पड़ते हैं। तो अगर इनके पास इतनी पावर होती तो ये अपने काम ना कर लेते, कभी इनकी जिंदगियां पढ़ के देखेंगे ऐसी होती हैं। अच्छा फिर अब एक बात है, बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हम वो हम फलां के पास गए, वो कहते हैं हम रूहानी अमलियात करते हैं। एक तो होते ना वो हमारे सामने इश्तहारों में बोलते हैं मौक्किलात की ताकत से हम ये कर देंगे, मौक्किलात हमारे वो कर देंगे, वो तो समझ ही लेना मौक्किलात क्या है, जिन्नात है, वो शयातीन जिन्नात से मदद लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो इन डिस्गाइज काम करते हैं, भेस बदल के काम करते हैं, वो कहते हैं नहीं हम जादूगर थोड़ी हैं, हम तो अमलियात करते हैं, और अमलियात तो दूसरे भी कहते हैं मगर रूहानी अमल करते हैं हम, अल्लाह के कलाम से हम इलाज करते हैं, हालांकि वो होते जादूगर हैं। पता कैसे चलेगा ये जादूगर है या वाकई कोई सही बंदा है, अल्लाह का वली है कोई है, कैसे पता चलेगा आपको? आप एक बोर्ड पढ़ते हैं, किसी ने आपको बता दी फलाने के पास तुम चली जाओ, मेरा तो वहां काम हो गया था, मेरी तो फलां को वहां से शिफा मिली थी, ये हो गया था, अब आप कैसे इसकी पहचान करेंगे? तो मैं आपको कुछ अलामत बताती हूँ, अगर इनमें से कोई अलामत है तो वो जादूगर है, चाहे वो अपने आप को कितना ही बड़े रूहानी बाबा कहे, ठीक है। नंबर वन उसमें लिखे जादूगर जो है ना मरीज से उसकी माँ का नाम पूछता है, समझ जाए ये जादूगर है, क्योंकि कुरानी आयात पढ़ने के लिए माँ के नाम की जरूरत नहीं होती, ना ही दुआओं और अज़कार के लिए जरूरत होती। नंबर टू, अगर वो मरीज के कपड़ों में से कोई कपड़ा मांगता है, कमीज ले आ उसको, रुमाल टोपी वगैरह कुछ भी, ठीक है, जिससे मरीज के, मरीज मतलब कह रही हूँ यानी जिसके ऊपर जादू करना है, उसके पसीने की बू आती है, तो फिर वो लेकर आए आप, फिर वो ना ऊंची आवाज़ से सूरह कौसर या कोई और छोटी सूरतें पढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आवाज़ से अपने अपने जंतर मंतर जो हैं वो पढ़ने शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो बंदे को धोखा हो जाता है, वो सोचता है कि नहीं ये तो कुरान से ही करते हैं, इन्होंने तो मेरे सामने ही ये पढ़ी हैं। तो बात यह है कि वो आपके सामने तो एक सूरत पढ़ी ना, उसके बाद वो अपनी उसने कुछ और शुरू कर दिया पढ़ना। फिर इसी तरह अगर वो कोई ख़ास जानवर मांगता है कि फलां रंग का बकरा ले आओ, फलां ये कर लो, फिर ये इस तरह से कर लो, ख़ास तौर पे काला मांगते हैं, काला भी जिन्नात को बड़ा पसंद होता है, फिर बाज़ दफ़ा उसका खून जो है ना वो जिसके ऊपर जादू करना होता है उसके ऊपर मल देते हैं, या फिर बाज़ दफ़ा नहीं भी मलते, लेकिन कहते हैं कि इसको ऐसे मकाम पे जाके फेंको इस जानवर को वीराने में, कहीं जहाँ पे भी उनका जो जिन है वो खुश हो जाए इससे। फिर आप अगर देखें कि कभी वो ऐसी लाइंस वगैरह लगाते हैं ना, लकीरें लगाते हैं और हिसाब करते हैं, फिर उनमें ऐसे कोई डिजिट्स वगैरह लिखते हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आते, ठीक है, तो ये भी समझ जाएंगे ये जो लकीरें खींच रहे हैं ना ये सही नहीं है। फिर ऐसे कुछ वजीफे पढ़ने शुरू हो जाते हैं जिनकी आम आदमी को समझ ही ना आए, इसी तरह कोई ऐसा हिजाब सा देते हैं, डाल देते हैं ऊपर जिसमें खाने बने होते हैं और खानों के अंदर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, नंबर लिखे हैं कुछ ऐसे इस तरह से लिखे हैं जो हमें समझ नहीं आ सकते। फिर अगर कोई ये कहे कि इतने अरसे तक आपने लोगों से दूर रहना, लोगों से अलग रहना, और ख़ास तौर पे किसी ऐसे कमरे में जहाँ पे सूरज की रोशनी ना आती हो। अगली बात ये कि वो ऐसी कोई चीज़ देते हैं कि जिसको ज़मीन में दफन कर दिया जाए, ये ज़मीन में आपने दबा देनी है, कोई ऐसी चीज़ अगर दें समझ ले जादूगर। इसी तरह अगर वो ये कहें कि इतने अरसे तक आपने पानी को हाथ नहीं लगाना, जो अक्सर होता है कि 40 डेज तक वो कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जादूगर जिस जिन से हेल्प लेता है ना वो ईसाई है। फिर अगर वो कोई ऐसी चीज़ दें, कोई ऐसे कागज़ वगैरह दें कि इसको जला के इनकी धुनी लेनी है, सोचें धुनी से क्या होगा, धुआं होगा, धुएं से जिन आएंगे, जिसने अल्लाह के कलाम को पढ़ना फिर उसको धुनी लेने की क्या ज़रूरत है ये बताएं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत अफसोस है मुझे ये कहना पड़ता है, बाज जगह बहुत एहतियात से मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद विटनेस किया है, बाज जगह ऐसे लोग इमाम मस्जिद होते हैं, बाज जगह ऐसे लोग यहाँ पे बड़े मौला ना कहलाते हैं लेकिन वो भी ये काम करते हैं। अगर कोई आपको इस तरह के काम करने को कहे, समझ ले ये जादू की चीज है। और कोई औरत अपने शौहर को चाहती है ना कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करने लगे, तो भी किसी खाने की चीज पे दम करते हैं जिसमें दो चीजें मिली होती हैं, निजासत गंदगी हैज का खून। एक चीज क्या, गंदगी नजासत, और नंबर टू हैज का खून। फिर उसको कहते हैं कि इसको ना शौहर के खाने में मिला के और उसको बस दे देना। अच्छा, फिर कभी ऐसा भी होता है कि वो आप उसके पास पहुंचे ना, आमिल बाबा या जो भी उसका नाम कह लें, आपके इंसानों में से ही है वो, कोई ये नहीं होगा काला चोगा पहन के कोई बैठा होगा, मन के पहन के गले में बैठा होगा तो फिर ही आप समझेंगे कि ये है वो जादूगर। नहीं, इसकी इनमें से कोई भी ऐसी पहचान नहीं है ये यहाँ पे। ये चीजों को जानने जिस जो ये करे, कभी कभी ये ऐसा करते हैं कि जब कोई इनके पास पहुंचता है तो उसका नाम, उसके शहर का नाम और जिस वजह से वो आया वो सारा बता देते हैं। हमें पता है तू क्यों आया है, तुझे तेरे पास औलाद नहीं है, तू औलाद के लिए हो जाएगी तेरी औलाद। तो बंदा कन्विंस हो जाता है, अच्छा ये तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इनको तो इतला मिल गई मेरे आने से पहले। तो बात ये नहीं है, वो जिन इतला लेकर आया है, इसके पास जिन है, उसकी स्पीड ज्यादा तेज है जिन की, आपके पहुंचने से पहले ही वो पहुंच चुका है। फिर कागज के ऊपर या कोई पक्की मट्टी का की प्लेट पे वो चंद हरूफ लिख के दे देता है, ये पानी में मिला के मरीज को या जिस पे जादू हुआ है उसको पिलाना है, या जिसको उसे कुछ कर जुदाई करनी है या मिलाना है, जिसको पर भी जादू करना है उसको ये पिला दिया जाए। तो अगर इनमें से कोई भी बात हो तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि यहां से मैंने दूर रहना है, क्योंकि याद रखें ये जगह जादू की जगह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने आपको हदीस बता दी है कि जो ऐसे किसी के पास गया जादूगर के पास, उसने उस चीज का इनकार कर दिया जिस जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, आपकी नबुवत का इनकार कर दिया। सोचें मुसलमान कहाँ रहेंगे अगर ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो। और जादू का इलाज जिसने कराना है कि अगर उसके ऊपर जादू हुआ हुआ है तो क्या इलाज कराए, तो जादू का इलाज जादू से नहीं है बल्कि कुरान से ही है, मसनून अजकार से ही है, यही जायज इलाज है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तो चीज ये है कि इंसान अल्लाह के कलाम में जो आयात, वैसे तो अल्लाह का सारा ही कलाम शिफा है, अल्लाह ताला ने खुद इसको शिफा फरमाया, लेकिन इसमें कुछ आयात ऐसी हैं जिनके बारे में खास तौर पे कहा गया है कि ये शिफा की आयात है या ये जादू से के असर को जायल करने वाली आयात है, जिनमें एक सबसे पहले तो सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा पढ़ें और उसके बाद सूरह बकरा आयत 1-5 तक ये लिखते जाएं आप साथ साथ। अगर आप, मैं बाद में आपको बताऊंगी भी कि किस तरह से आपने करनी है। फिर यही आयत जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 102 सूरह बकरा की, फिर सूरह बकरा आयत नंबर 163 और 164, सूरह बकरा आयत 255 यानी आयतल कुर्सी, और उसके बाद की दो आयत, फिर उसके बाद सूरह बकरा आयत 285-286, सूरह आले इमरान आयत 18-19, सूरह आराफ आयत 54 से लेके 56 तक, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक, यहां से लेके 54 से 56 तक, सूरह आराफ आयत 117 से 122 तक, सूरह यूनस 81 और 82, सूरह तौहा 69, सूरह मोमिनून 115 से 118 तक, सूरह सौफात 1-10 तक,
سورہ احقاف 29 سے 33 تک، سورۃ رحمان 33 سے 36 تک، سورہ حشر 21 سے 24 تک، سورۃ الجن 1 سے 9 تک، اور پھر سارے جو ہیں چاروں جو کل ہیں، کافرون، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ سب، ٹھیک ہے، یہ سب پڑھنی چاہیے. تو انشاء اللہ تعالی جادو سے انسان محفوظ رہتا ہے. اگر کوئی مریض ہے، کسی کوئی بیمار ہو گیا ہے جادو کی وجہ سے، اور وہ بھی یہ پڑھیں. اس کے علاوہ کیسٹ کے اوپر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ دخان، سورہ جن اور سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک، یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں نا 30ویں پارے میں، یہ ریکارڈ کر کے، یہ جس کے اوپر جو بھی مریض ہے وہ کیسٹ کو ہر روز 3 دفعہ سنیں. اس کے علاوہ کلونجی کے تیل پہ یہ آیات اور یہ صورتیں پڑھ کے دم کر دیں، اور اس تیل کو پیشانی پہ اور جس جگہ پہ درد ہو اس جگہ پہ صبح شام مالش کریں. سورہ فاتحہ، معوذتین اور یہ دوسری صورتیں، ٹھیک ہے. اچھا، ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا کے رکھیں؟ پتہ ہے کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم بچاؤ کی وہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جادو کے اس سے بچ کے رہیں گے. وہ بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، جیسے نہار منہ، 7 اجوا کھجوریں اگر کھائیں، مدینہ کی اجوا کھجور اگر مل جائیں، اگر نہیں ملیں تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری کوئی اور اجوا کھجور استعمال کر لیں، لیکن پریفریبلی مدینہ کی جو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے بعد 7 اجوا کھجوریں کھائے اس دن اسے کسی قسم کا زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر نمبر 2 یہ کہ باوضو انسان پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ باوضو انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر باجماعت نماز کی جو پابندی کرتا ہے وہ بھی شیطان سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جب انسان فرض نمازوں میں لاپرواہی کرتا ہے تو وہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی بھی بارے میں حدیث ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی گاؤں یا صحرا میں کم سے کم 3 آدمی موجود ہوں پھر بھی وہ نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں تو ان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. لہٰذا تم جماعت کا اہتمام کرو، کیونکہ بھیڑیے کا شکار بھی وہی بکری ہوتی ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. یہ اکیلے اکیلے ہو کے رہنا، اس سے شیطان شکار کر لیتا ہے، جیسے بھیڑیا اکیلی بھیڑ کو لے کے تو اس کو شکار کر لیتا ہے. اسی طرح اگر انسان قیام اللیل کا اہتمام کریں، یعنی تہجد کی نماز پڑھیں، یہ وہ قلعہ ہے جس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. تہجد کی نماز جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ وہ صبح کو مسلسل سویا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. یعنی شیطان دیکھیں انسان کے اوپر پھر اس طرح سے حاوی ہو جاتا ہے. اسی طرح جب باتھ روم میں جائیں تو پہلے دعا پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ باتھ روم ناپاک جگہ ہے نا، اس میں شیاطین اور اس طرح کی وہ بھی گندے ہوتے ہیں، وہ ناپاک جگہوں کو پسند کرتے ہیں، تو اس لیے ایسی جگہ پہ وہ جلدی انسان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. تو آپ نے یہ کبھی سنا ہے، لوگوں نے کہتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پیشاب کرنے بیٹھا، اس کے بعد اٹھا، پتہ نہیں کیا اس کے اوپر اثر ہو گیا، پھر اب وہ ایسی بہکا بہکی باتیں کرنے لگا، پھر یہ ہو گیا. تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مطلب رفع حاجت کے لیے گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ اثر ہوا، ٹھیک ہے. تو اس لیے دعا پڑھ کے ضرور جانا چاہیے. پھر نماز میں تعوذ کا پڑھنا، یہ بھی اگر آپ پڑھیں گے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نماز میں یہ کلمات پڑھ رہے ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہم سبحانک اللہم و بحمدی کا شروع میں پڑھتے ہیں نا، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اور مسنون ذکر بھی ہے، جو یہ سبحانک اللہم و بحمدی کا جو ہم جس سے سٹارٹ کرتے ہیں نماز، اس کی جگہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ، ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ وَنَفْثِهِ وَحَمْزِهِ, نفخی نفخہ جیسے ہوتا ہے, نفخہ سور, نفخہ سور جیسے ہوتا ہے نا, ف خ ہ سے, اور نَفْثِهِ نون ف ف سیج ہوتی ہے, نَفْثِهِ کہ شیطان مردود کے شر سے, اس کے شیروں سے اور اس کے جنون سے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ چاہے سبحانک اللہم پڑھیں, چاہے آپ یہ اللہ اکبر کبیرہ پڑھیں, لیکن سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وحمزہ, تو اس سے آپ کی حفاظت ہوگی. پھر جب عورت اور اپنے شوہر سے یعنی جمع کریں تو تب بھی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت بھی شیطان آ جاتا ہے. تو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ پھر شیطان نقصان نہیں دے سکتا اگر اس ریلیشن شپ سے کوئی اولاد ہو. اسی طرح اگر سونے سے پہلے انسان باوضو ہو جائے, اگر آپ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں اور آیت الکرسی پڑھیں, نیند آنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں, تو پھر بھی نہیں شیطان آئے گا انشاءاللہ. تو کیونکہ دیکھیں شیطان نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا نا کہ جو بھی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس رات اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے, اور پھر شیطان اس رات اس شخص کے پاس نہیں آ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شیطان نہ ہے, لیکن اس نے بات صحیح کی ہے. پھر فجر کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ فجر کی نماز کے بعد 100 ٹائمز پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی ایسا کیا تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی, 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور اس دن وہ شیطان کے شر سے, دن بھی اور رات بھی, رات تک بھی وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. کیا اور اس سے بڑھ کے افضل عمل کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا. تو جس نے یہ پڑھا ہوگا نا, شیطان اس دن اس میں نہیں داخل ہو سکتا. پھر صبح شام آپ دعا پڑھیں, بسم اللہ لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 ٹائمز یہ پڑھیں. یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے یہ سب نا, اس لیے آپ صبح شام کی دعائیں اگر پڑھتے ہیں تو پھر تو آسانی ہے. اسی طرح گھر سے نکلتے وقت جب آپ دعا کرتے ہیں نا, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بھی مسنون دعا ہے گھر سے نکلنے کی. جب آپ یہ دعا پڑھ کے نکلیں گے تو پھر یہ خوشخبری آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور آپ ہر شر سے محفوظ ہوتے ہیں. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اور شیطان بھی انسان سے دور رہتا ہے. اور ایک شیطان دوسرے شیطان ساتھی سے کہتا ہے کہ تم اس آدمی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو جو اب ہدایت پا دیا گیا اور بچا لیا گیا, ہدایت یافتہ ہو گیا یہ. اسی طرح صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے, یہ بھی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون, یہ بھی ہیں. تو یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے صبح شام کی. اگر آپ حفاظت کی دعا پڑھیں گے تو پھر تو ویسے ہی انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی. پھر سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے اس جگہ پہ بھی شیطان سے وہ جگہ محفوظ رہتی ہے, خاص کر جو شروع کی ہیں اور آخر کی ہیں, اور پھر آپ شروع کی جو 5 آیتیں ہیں اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 ہیں اور اس کے بعد آخر کی جو 3 ہیں. تو اگر آپ یہ رات کو پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان پھر ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتا, ان گھر والوں کو کوئی چیز نہیں ستا سکتی. اور اگر کوئی مجنون ہے نا, جنونی ہے کوئی, اللہ معاف کرے کسی کو ایسا دورہ پڑتا ہے, کوئی جنون کا دورہ یا کوئی ویسے ہی اسپیشل ہے, تو پھر اس کے لیے بھی اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے یہ پڑھنے سے. تو یہ ساری دیکھیں, یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے ان سارے جادوؤں سے اور ان چیزوں سے جو حفاظت کے لیے ہمیں بتا دی ہیں, تو ہم ان چیزوں کا اگر پابندی سے کریں. اور دوسری ایک بات یہ ہے, ہمیشہ پاک صاف رہیں, طہارت کا خیال رکھیں اپنا, اپنی ظاہری. ہم باہر سے پورے میک اپ اور یہ کر لیتے ہیں, اندر ہماری گندگی رہتی ہے. یعنی اپنی جسمانی بھی نا, اپنی ہر طرح کی صفائی کا, اپنے فالتو بال صاف رکھیں, اپنے پسینہ ایسے نہ آنے دیں, غسل کیا کریں, وضو سے رہا کریں, مطلب نجاست سے جتنا دور رہ سکیں پاک صاف خود کو رکھیں. جب آپ کے نجاست کے دن بھی ہوں تو تب بھی جتنا بھی پاک صاف رہ سکے اس کی کوشش کریں. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذتین پڑھتے تھے نا, سورہ فلق اور ناس پڑھ کے رات کو ہاتھوں پہ پھونک کے اور سر سے پیر تک سارے جسم پہ جہاں تک ہاتھ جاتا تھا, یعنی سر سے لے کے جہاں تک ہاتھ جاتا تھا پہلے سامنے پھر پیچھے پھیرتے تھے. تو یہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی کو کے اوپر اگر شوہر بیوی میں جدائی کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے, اس کا ایک اور علاج بھی ہے جو کہ ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بیری کے درخت کے سبز پتے لے کے پتھر پہ اس کو کوٹ دیا جائے. وہ سل بٹا ہوتا تھا نا, تو بیری کے جو درخت ہے اس کے گرین پتے لے کے وہ اس کو اس پہ کوٹا جائے, جب وہ پیس لیں تو پھر اس کے بعد کسی برتن میں ڈال لیں اور اتنا پانی اس میں بھر دیں کہ جتنے پانی سے پھر آپ وضو کے لیے کافی ہو, غسل کے لیے کافی ہو. پھر اس پر آیت الکرسی, سورۃ الکافرون, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک, سورہ یونس 79 سے 82 تک, سورہ طہٰ 65 سے 70 تک, یہ آیات پڑھیں, اس کے اوپر اس پانی پہ دم کریں, تین گھونٹ پی لیں اور باقی سے غسل کر لیں. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ایسا جادو ہوگا نا وہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اور اگر میاں بیوی میں اختلافات بھی ہوں وہ بھی دور کرنے ہوں تو تب بھی ان شاء اللہ پورے یقین سے پڑھیں گے تو اختلافات بھی دور ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ان سے اللہ کرے کہ جو اس کو پورے یقین کے ساتھ کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا کلام ہے, ضرور اس کے اندر آپ دیکھیں گے اثر ہوگا. لیکن کبھی بھی ڈرنے کی نہیں ضرورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا نا کہ یہ نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ, اور اس میں نفع کوئی نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.